फिर विज्ञान कहता है जन्म से जो हम हैं साधना के द्वारा वही स्थिति को प्राप्त करना वो योग है। जो हम थे जब आप जन्मे थे आपको कोई चिंता थी, कोई भविष्य की बात थी, आप किसी को अच्छा या किसी को बुरा मानते थे, आप स्वयं निर्दोष थे, आपकी आंखों में पवित्रता थी, आपके हृदय में विशालता, आपका मन शुद्ध था, लेकिन जगत के संपर्क में आकर के सुनने और देखने से धीरे धीरे मन जैसी संगत किया उसी तरह से विचार का परिवर्तन होता रहा। जो परिवर्तन है पानी से बर्फ बनना और फिर बर्फ से पानी आ जाना, अगर हमारे आपके अंदर कुछ बुराई नजर आ रही है तो उस अस्तित्व में विचारों के द्वारा परिवर्तन आया। और आपका विज्ञान खुद कह रहा है कि पानी से बर्फ का बनना ये परिवर्तन है। एक विधि से आप देखेंगे कि पानी बर्फ के रूप में आता है, समय संजोग से फिर आप देखेंगे कि बर्फ पानी के रूप में वापस आ जाता है। आप शुद्ध थे, बुद्ध थे, मुक्त थे, जगत को देख करके परिवर्तन हुआ और जो बार बार बदल रहा है, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम को कुछ, एक क्रम चल रहा है, उसी को संसार, उसी को जगत कहा। लेकिन आप तो वही के वही हैं। सूरज निकला, दोपहर होती है, शाम होती है, जो सूरज डूबा वह निकलेगा, आज पूनम है तो अमावस आएगी, आज अगर अमावस है तो पूनम आएगी, आपका अपना देखे क्या फर्क पड़ा, आप इससे प्रभावित क्यों हुए, केवल विचारों की बात। अब एक अमावस की बात ले लीजिए, सभी वर्ग के लोग मेरे संपर्क में हैं, हम लोग कहते हैं अमावस दिन कोई शुभ काम न करो, लेकिन कुछ लोग अमावस दिन शुभ काम करते हैं, इसके पीछे आपका विचार ही काम कर रहा है। अमावस अपनी जगह है लेकिन एक ने शुभ एक ने अशुभ माना। जब आप कहते हो सब में परमात्मा है तो अशुभ क्या हुआ, जय कृष्णामूर्ति कहता है अरे भारतवासियों ये अमावस का चक्कर, बिल्ली का चक्कर, ये विधवा के चक्कर में से निकलोगे, ये अशुभ में से निकलोगे तभी शुभ में प्रवेश पाओगे, अंधकार में से निकलोगे तो प्रकाश को जाओगे, लेकिन तुम निकलना ही नहीं चाहते, तुम वहीं बैठे हो, आप एक दलदल में फंसे हैं, कोई निकालने के लिए आता है लेकिन दलदल में रहते रहते आप उस दलदल को ही सब कुछ मान लिया, आप उससे निकलें और आप निकल सकते हैं। जैसा कि शुरू में कहा कि पशु पंछी में उनका एक जीवन है, वो जिएंगे, पूरे ब्रह्मांड में उनका एक अस्तित्व है, वो अपने ढंग से जी रहे जीते रहेंगे, लेकिन आप और हम यहाँ जो बालक और बालिका बैठे हैं, जो नर और नारी बैठे हैं, आप में जबरदस्त सोचने की शक्ति है। न्यूटन ने देखा और सोचा और विचार करके बताया कि भाई ये गुरुत्वाकर्षण है। न्यूटन के पहले भी लोगों ने देखा होगा कि एप्पल गिर रहा है लेकिन विचार नहीं किया। यही मैं आपसे कहता हूं, आप जी रहे हैं, सुबह से शाम चल रहे हैं, मैं आपकी किसी चीज का खंडन नहीं कर रहा हूं। खूब पैसा कमाओ, खूब बड़े पद पे जाओ, यहां भी सब, यहां भी कमिश्नर बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, प्रोफेसर बैठे हैं, करोड़पति बैठे हैं, हर तरह के लोग बैठे हैं, आप बढ़ो, लेकिन आप में चिंता क्यों आई, आप में दबाव क्यों आया, आप दुखी क्यों हुए? आपका जो अस्तित्व है वो तो आनंद का है, सत है, चेतन आनंद है, सच्चिदानंद है। आपने आनंद के अस्तित्व पर दुखों की इमारत क्यों ला करके बना दी? ये जो वास्तविकता है, जो आपका अस्तित्व है, वो आप नहीं बना पाते। लेकिन उसके आधार पर ये जमीन है, जमीन आप नहीं बना सकते, लेकिन जमीन के आधार पर जमीन का ही अब ईंट है कि पत्थर है, उसमें जो कुछ निकला है, आप जमीन नहीं बना सकते, आप पत्थर नहीं बना सकते, लेकिन जमीन के आधार पर, जमीन की ही बनी हुई चीज से आप इमारत बना सकते हैं। जब मिट्टी आप देखेंगे ये आकार लेती है तो मिट्टी ही है, भले उसका आप ईंट बोलें, पत्थर बोलें, जो बोलना। आपका अस्तित्व सच्चिदानंद है, सत है, उसमें चेतना है, उसमें आनंद है, तो आपका अस्तित्व आनंद का है। और आनंद से आपने इमारत बनाई, आप कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, आपने त्याग करके साधु वेश धारण किया, आप महान योगी बने, फिर आप दुख का कारण क्या है? आप करोड़पति बने, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। आपका जो अस्तित्व है वो आनंद का है, आप जो कुछ कर रहे हैं आनंद के लिए कर रहे हैं, तो दुख कहां से आ गया? मैं कहता हूं एक करोड़ की बिल्डिंग बनाए, आप आनंद के लिए बनाए दुख? अगर आप दुख समझते तो बनाते ही नहीं। आपने लगन किया तो आज दुख क्यों हो गया? आज आप बड़े बड़े पद पर हैं, तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? आज आप एक महान योगी हो गए, पूरे विश्व में आपका नाम हो गया, फिर आप परेशान क्यों हो गए? परेशानी का कारण हम स्वयं हैं, हम अपने को नहीं समझ पाए। चाहे वो रामायण से लें, चाहे वो महाभारत से लें, चाहे आज के किसी महापुरुष से लें, या व्यक्ति से लें, या किसी पदाधिकारी से लें, आप जो कुछ करते हैं आनंद के लिए, लेकिन आनंद में विक्षेप क्यों पैदा हुआ? आनंद दुख में क्यों बदल गया? अब आपको बताता हूं। आप जा सोचें, विचारें, पहले रामायण की बात ले लें, महाभारत की बात ले लें, कि हमसे भूल कहां हुई? पूरी रामायण का आधार अगर लें तो दुख क्यों पैदा हुआ? महाभारत का आधार लें तो दुख क्यों पैदा हुआ? जा विचार कीजिए। ईश्वर ने हमें आपको धरती पर भेजा, आप कान नहीं बना सकते, आंख नहीं बना सकते, जीवा नहीं बना सकते, हाथ नहीं बना सकते, लेकिन आपके विचार का जो विकास है, प्रगति या अधोगति, वो सुनने और देखने से। इसलिए आज पूरा विश्व हमारी संस्कृति के आधार पर सत्संग की बात, कीर्तन की बात, मंदिर की बात, मस्जिद गुरुद्वारे की बात, प्रार्थना स्थल की बात, चाहे आप प्रार्थना करें कि नमाज पढ़ें, माता पिता को प्रणाम करें, नदी की पूजा करें, पेड़ की पूजा करें, इस पूजा के रहस्य को समझें, सभी में परमात्मा है। तो आप जब किसी की पूजा करेंगे तो आपके विचार में परमात्मा आएगा। हम कहते हैं सब में परमात्मा है, तो जब सब में परमात्मा है तो परमात्मा में कुछ और देखना वही दुख को मोल लेना है। हम लोग जंगलों में रहते हैं, हमारे भक्त हैं, हमारे संत हैं, जंगलों में रहते हैं। कभी आपने सुना किसी संत को नाग ने काटा या शेर ने अपना खुराक बनाया? आज वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया कई बार पेपर के माध्यम से आपने पढ़ा भी होगा कि अचानक व्यवस्था के कारण अपने बच्चे को कोई जंगल में छोड़ आता है, जैसे समाज नहीं स्वीकार करता, भय के कारण, लज्जा के कारण उस समाज में शादी के पूर्व बच्चे को स्वीकार नहीं किया गया। प्रगति अपना काम करती है लेकिन समाज ने नहीं स्वीकार किया, समाज के भय के कारण बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाता है। फिर उसकी रक्षा नाग ने किया, गाय ने दूध पिलाया, क्यों? वो निर्दोष है, पवित्र है, शुद्ध है। यही बात मैं आपसे कहता हूं, मेरे प्रिय आत्मन, आप एक बार बच्चे जैसे बन जाएं, आपके अंदर पवित्र भावना आ जाए, अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा बोलें, आपका चिंतन शुद्ध हो तो पूरा जगत आपकी सेवा में है। अरे इंसान तो इंसान क्या, ये नाग भी आपकी सेवा करेगा। भगवान शंकर का स्वरूप अब वैज्ञानिक लोग विचार कर रहे हैं, भगवान शंकर आंख बंद रखते हैं, मुख बंद रखते हैं, शुद्ध वातावरण में है, गले में नाग है, सिर पर गंगा है। आज आपका मनोविज्ञान हमारी प्रतीक उपासनाओं का एक गहरा अर्थ लगा रहा है। अब खंडन नहीं कर रहे हैं, पहले खंडन करते थे ये सब क्या है, लेकिन अब तो रसिया के वैज्ञानिक भी हमारी रामायण, हमारे महाभारत, हमारी छोटी छोटी कहानियों पर विचार करके एक विचार दे रहे हैं कि भारत की हर चीज, उठना बैठना, सोना जागना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, मंदिर में जाना, को अंतःकरण को शुद्ध करें। और जब वो शुद्ध होगा तो जैसे गुलाब का फूल खिलता है उसमें सुगंध अपने आप आ जाती है। जब आपका अंतःकरण खिलेगा, साहब ने कहा मानवता की बात, डॉक्टर साहब ने बड़ी सुंदर बात की, मकर संक्रांति की, पतंग की, बहुत अच्छी बात सुन गए। अब वही जब आपका अंतःकरण खिलेगा तो मानवता की महक उसमें अपने आप आ जाएगी। गुलाब के फूल को सुगंध ढूंढने की जरूरत नहीं, वह खिलता है और उसमें सुगंध आ जाती है। हम आप खिलना चाहते हैं लेकिन क्यों नहीं खिल पा रहे हैं? या तो भूत से बंधे हैं या तो भविष्य में, वर्तमान में हैं आप। आज का दिन कितना अच्छा है, आप आज में हैं, अपने में उपस्थित हैं। लोग कहते स्वामी जी आप कहते हो कि परमात्मा मेरे साथ है, स्वामी जी अगर परमात्मा मेरे साथ है, एक बार मेरे से प्रश्न भी किया गया था, मैं तो सबको मानता हूं, मैं तो ओम पूर्ण मदा पूर्ण मिदम का हूं, भारतीय संस्कृति का एक सिपाही हूं, मैंने भारतीय संस्कृति को अच्छी तरह पचाया है, मैंने राम को भी जीवन में उतारा है, कृष्ण को भी उतारा है, शिव को भी उतारा है, पैगंबर को भी, पीर को भी, फकीर को भी, सभी अपने हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी मेरे से प्रश्न किया गया, स्वामी जी परमात्मा अगर हमारे साथ हैं तो हम दुखी क्यों हैं? परमात्मा तो सच्चिदानंद है, परमात्मा तो पूर्ण है, हम दुखी क्यों हैं? तो तो मनीषानंद कहते हैं आपने सुना परमात्मा हमारे साथ है। अब मनीषानंद से सुनिए, परमात्मा आपके साथ है, आप परमात्मा के साथ हैं कि नहीं? परमात्मा तो सहज है, विकट से विकट परिस्थिति में भी परमात्मा ने कर्म का त्याग नहीं किया। और अर्जुन त्याग करना चाहा तो परमात्मा ने कहा कि तू गांडे उठा। किस परमात्मा ने कहा कि कर्म छोड़कर आओ मैं तुम्हारा काम कर दूंगा? कृष्ण चाहते तो कह सकते थे हे अर्जुन तू मेरा प्रिय पात्र है। विराट में दिखा भी दिया कि सारी व्यवस्था मेरे हाथ में है, और कह सकते थे कृष्ण प्रिय अर्जुन तुझे किसी बात का मन में भय नहीं रखना है, तुझे कोई चिंता नहीं करनी है, इस सारी व्यवस्था मेरे हाथ में है। फिर क्यों कहा कि मेरा स्मरण कर, मुझे साथ में रख और अपने कर्तव्य का पालन कर? और इस विचार को जब अर्जुन स्वीकार करता है तो सहज बन करके अपने कर्तव्य का पालन करता है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, स्वामी जी सुबह शाम मंदिर जाता हूँ, आरती करता हूँ, प्रसाद का मंदिर से ला करके पूरे परिवार को प्रदान करता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब आप से मैं कह रहा हूँ कि परमात्मा आपके साथ है तो आप चिंता किस बात की करते हैं? आप फल की चिंता, आज का जो कर्म है वर्तमान का उसे नहीं संभाल रहे, कल क्या होगा? कर्म है आपका वर्तमान और फल है भविष्य। और फिर मनोविज्ञान आ गया कि भविष्य की चिंता में आप वर्तमान का विनाश कर रहे हैं, और जिसने वर्तमान का सत्यानाश किया उसका भविष्य कैसे उज्जवल बनेगा? अर्जुन गांडीव को उठा, अवरोध आएगा, विरोध आएगा, राक्षस आएंगे, राक्षसनी आएंगे, लेकिन मैं तेरे साथ हूं, तू चिंता मत कर। प्रिय आत्मन, आप जिसे भी मानते हैं, राम को कि कृष्ण को, शिव को, गुरु को, आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि ईसाई हैं, ये आपका विचार है, आपकी आस्था है। आपकी आस्था को मैं हिलाना नहीं चाहता, आपकी आस्था को वहीं पर दृढ़ करना चाहता हूं। अगर प्रहलाद की आस्था है कि सब जगह परमात्मा है, कहानी के माध्यम से आप जानते हैं, हिरण्यकश्यप ने कहा अगर सब जगह तुम्हारा परमात्मा है तो देखता हूं तेरा परमात्मा कैसे प्रकट होता है। आज ये कहानी केवल कहानी नहीं रही, आज पूरा मनोविज्ञान मान रहा है परमात्मा सब जगह है, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए जबरदस्त श्रद्धा और विश्वास चाहिए। हमारे संत जहां बैठे वहां तीर्थ बन गया और आपको तीर्थ में भी आनंद नहीं आता। भगवान शंकर का जो स्वरूप बता रहा था वो शांत है, सहज है, सिर में गंगा है, अच्छा विचार है। तो आज मनोवैज्ञानिक बता रहे हैं कि जिसके पास शुभ विचार है, शिव कल्याणकारी विचार है। और कल्याणकारी विचार का मतलब क्या? समाज और देश के हित में, परिवार के हित में जो स्वयं जहर पी लेता है, जहर पी करके नीलकंठ बन जाता है, आज आपका मनोविज्ञान कह रहा है अगर आप नेता बनना चाहते हैं, एक अच्छे मंत्री के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, गुरु के रूप में, घर के एक वडील के रूप में सरपंच बनना चाहते हैं, प्रमुख बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री सबके लिए। अगर समाज में आप अपने आप को महादेव बनाना चाहते हो तो आपको उस देश का, उस समाज का, उस घर का जो जहर है वो पी करके पचाना पड़ेगा, तो आप परिवार, समाज और देश के बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो अपने सुख के लिए दूसरे को जहर दे रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं। ये आपका शरीर, मैं आपके रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कहता पूरा ब्रह्मांड अगर देखा जाए तो आप उसके मालिक हैं। आप अपने इस शरीर को ही देखिए, इस शरीर को ही पाएंगे कि पूरा ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ। नदी में से एक गिलास जल लाइए, उसकी एनालिसिस कीजिए, आपका मनोविज्ञान भी कहता है, विज्ञान भी कहता है। पानी अगर खारा है तो गिलास का जल भी खारा है, नदी का पानी अगर मीठा है तो गिलास का पानी भी मीठा है, नदी में सल्फेट है तो गिलास के पानी में भी सल्फेट है, उसमें सल्फर है तो इसमें भी सल्फर है, उसमें दुर्गंध है तो इसमें भी दुर्गंध है। जा विचार कीजिए, जो आपको बताना चाहता हूं, आप में जब कहा कि पूरा ब्रह्मांड, और पूरा ब्रह्मांड अब इसी नदी पर फिर लीजिए, नदी में से थोड़ा जल लाकर हमने डोल में रख दिया तो गुण की दृष्टि से जल बराबर है, विज्ञान भी कहता है। गुण की दृष्टि से डोल का जल और नदी का जल बराबर है, लेकिन शक्ति में अंतर है। नदी में नाव चलेगी, नदी में आप तैरेंगे, लेकिन डोल के जल में प्यास लगने पर पानी पी सकते हैं लेकिन तैर नहीं सकते। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये जो विराट में से अलग हुआ, नदी में से जल डोल में लाकर जो रखे, 5-6 दिन के बाद वह पीने के लायक नहीं रहता, क्योंकि उसमें गति नहीं है, वह रुक गया है, उसमें गति नहीं है। विराट के आप स्वरूप हैं, और इसी डोल के पानी को आप जब गति में, आप नदी में समर्पित कर देंगे तो हमेशा पीने के लायक रहेगा, शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। हम आप अपनी चिंताओं से, दबाव के कारण, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, भगवान हमारे साथ है, नदी हमारे साथ है, लेकिन हम नदी से अलग हो गए। परमात्मा हमारे साथ है लेकिन विचारों से हम अलग हो गए चिंता के कारण, और यही चिंता जब चिंतन बन जाती है, जब विचार के रूप में रूपांतरित हो जाता है और आप सहज हो जाते हैं, तो जैसे डोल का पानी नदी में समर्पित करते ही उसमें गति आ जाती है। अर्जुन का एक विचार आया, भविष्य का विचार आया, मैं इनको मार के क्या करूंगा, एक रूपक है, एक प्रतीक है। अर्जुन वर्तमान से दुखी नहीं रहा, अगर वर्तमान से दुखी होता तो कृष्ण के पास नहीं जाता, कृष्ण को सारथी नहीं बनाता। लेकिन वहां देखने के बाद एक विचार आया और विचार भविष्य का आया और शिथिल हो गया। ये केवल अर्जुन की बात नहीं है, हम आप भी बहुत कुछ विचार करते हैं। जैसा कि शुरू में कहा, स्वभाव से आप पुत्र हैं कि पुत्री, लेकिन आप आसमान छूना चाहते हैं। आपके अंदर जो विराट बैठा है, आपके अंदर जो अनंत बैठा है, वह किसी सीमा में नहीं रहना चाहता, लेकिन भविष्य का विचार करके जैसे अर्जुन गांडीव रख दिया, शिथिल बन गया और कांपने लगा। आज आपका मनोविज्ञान भी कहता है, आपका शुभ विचार आप में शक्ति का संचय करता है, आपकी शुभ शक्ति का जागरण करता है। और भय से जब कोई विचार आ जाता है तो आप शिथिल हो जाते, कांपने लगते हैं, तो आप वही के वही। आप में कंपन क्यों पैदा हुआ? भय आया। भय क्यों आया? भय का क्या कारण है? या तो मर्यादा का उल्लंघन है, भविष्य का चिंतन है, हम ठीक से सुने नहीं, ठीक से बोले नहीं। ये सुनना भी कर्म है। मैं कहता हूं आप किसी को दान दें कि न दें, आप मंदिर जाएं कि न जाएं, आप नर्मदा गंगा में स्नान करें कि न करें, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना, आकाश का गुण है शब्द। आप जो इस समय बोल रहे हैं वो पूरे विश्व में उसका प्रसार हो रहा है। आप जो सुन रहे हैं, सुन करके विचार कर रहे हैं, वह विचार भले व्यक्त न करें लेकिन आपके पिंड में एक शक्ति पैदा कर रहा है। सुनने के बाद इसका उदाहरण दे दूं, पिंड और ब्रह्मांड का, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। जो चीज पिंड में हलचल पैदा करेगी, ये वैज्ञानिकों का आधार ले रहा हूं, हमारा न्याय है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। प्रियात्मन, जो शब्द, जो विचार, जो रूप, जो बोलना हमारे पिंड में, हमारे आपके शरीर में शुभ और अशुभ बन करके हलचल पैदा करेगा, वही शब्द, वही विचार पूरे ब्रह्मांड में भी हलचल पैदा करता है। एक उदाहरण, मैंने कहा मेरे प्रिय शिष्य आओ, तुम बहुत अच्छे हो। उसके अंदर एक विचारों की हलचल पैदा हुई, आनंद आया, प्रसन्नता आई। यहां थायमस नाम की ग्रंथि है। विचार जब माइंड रिसीव करता है, रिसीव करते ही जब अच्छे विचार होते हैं तो ये बहुत एक्टिव थायमस, ये जो हमारे थायमस ग्रंथि बहुत एक्टिव बनती है, और उसका प्रसार केवल प्रसन्नता का आप तक नहीं है, वो पूरे विश्व में है। मैंने कहा आओ मूर्ख, आओ निकम में, तो थायमस नाम की जो ग्रंथि है ये एक्टिव नहीं बनती, आप हताश और निराश हो जाते हैं, और हताशा निराशा में आप पर्यावरण का भी सत्यानाश कर रहे हैं। विज्ञान कहता है कि भारत में हर जगह देखा जाता है, अच्छे प्रसंग पर हम मिलते हैं, हंसते हैं, क्यों? जो सहज है वही हंस सकता है, जो हंसता है वह स्वयं के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए कुछ पोषण कर रहा है। जिसमें क्रोध आता है, जिसमें अहंकार आता है, इस बात को जो अच्छी तरह समझ ले, आप में क्रोध आया, कान पिंड में हलचल पैदा हो गई, आपकी बुद्धि ठीक नहीं, आप गलत निर्णय लेते हैं। आपके अंदर जब क्रोध पैदा हुआ, देखिए अब आपके अंदर भय पैदा हुआ तो कितना कंपन पैदा होता है। जो सोचते हैं उसकी जगह कुछ और बोल जाते हैं, जो देखना चाहते कुछ और देख लेते हैं। क्यों? इस शब्द का प्रभाव। तो प्रिय आत्मन, अब वैज्ञानिक मान गए, जैसे पिंड में जिस शब्द को सुनने से आनंद आता है, उसी शब्द के बोलने से पूरे ब्रह्मांड में भी आनंद आता है। मैंने कहा आओ बेटे, आप में तो आनंद आया, लेकिन मेरा शब्द आपके माध्यम से पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे देश को आनंद प्रदान कर रहा है।